जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है।
ॐ शांति। हम सबके बीच में दैवी भ्राता आदरणीय मोहन सिंघल जी विराजमान हैं। हम सभी निरंतर योगी मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित होकर भ्राता जी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आपका विषय है, मन जीत, अव्यक्त स्थिति को आपने प्यारे ब्रह्मा बाबा की बहुत नजदीक से देखा। उसी स्वरूप में आप स्थित हैं। आप प्यारे बाबा की विगत 55 वर्षों से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के चारों ही विषयों को पारंगत होकर चल रहे हैं। आप ने बी की पढ़ाई पढ़ी और इंजीनियर के रूप में आपने विभिन्न प्रांतों में अपनी सेवाएं प्रदान की और उन सेवाओं के साथ साथ प्यारे बाबा की सेवाएं भी आपने विभिन्न सेवा केंद्र खोलने की स्थापना के निमित्त बने। आपका मधुबन में पिछले 50 वर्षों से रहकर विश्व सेवा दे रहे हैं। साकार बाबा को आपने बहुत नजदीक से उनकी अनुभूति को और उनके प्यार को आपने प्राप्त किया। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ब्राह्मण परिवार के नैनों के नूर हैं। आप प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता के लिए भारत में तो भ्रमण करते ही हैं, लेकिन भारत के अलावा विभिन्न देशों में, विदेशों में भी जाकर आपने बाबा की प्रत्यक्षताओं की सेवाएं की हैं। अभी भी आप वरिष्ठ भाइयों की योग भट्टी में विश्व सेवा से ही आए हैं। ऐसे सम्मानित, आदरणीय और ज्ञान योग की प्रतिमूर्त भ्राता जी से हम मनजीत, जगत जीत, निरंतर योगी और अव्यक्त बाबा की उस आंखों देखे अनुभव को अवश्य सुनना चाहेंगे। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को ज्ञान, योग, सेवा, धारणा से संबंधित अनेक पाठ पढ़ाए हैं, अनेकों शिक्षाएं दी हैं और उनमें से आज के इस दिवस के अनुरूप कौन सी विशेष शिक्षा है जो हमें याद आती है और जो आने वाले अंत समय में भी हम सबको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसा कौन सा पेपर बाबा ने बताया है जो आज की परिस्थिति के अनुकूल है? हर्षित मुक्ता। और क्या बताया? अचानक और एवर रेडी। हम तो अपने कमरे में बैठे हुए थे, कुछ कार्य कर रहे थे, एकाएक एक भाई आए, उन्होंने संदेश दिया बहन जी का कि अभी ही तुरंत आप क्लास करा सकते हैं। तो वैसे शेड्यूल तो आज शाम का था, आप लोगों को भी ख्याल होगा, लेकिन एक तो आज की बाहर की परिस्थिति, जब प्रकृति की अति हलचल होगी, बाबा ने ये तो बताया है, जब प्रकृति की अति हलचल हो उस समय हमारे लिए कौन सी स्थिति होनी चाहिए, अति अचल। कोई भी, और ये तो थोड़ा सा पेपर है छोटा सा ही बरसात का, जब पांचों तत्व अपनी चरम सीमा पर होंगे और उस समय भी बाहर में जितनी भी हलचल हो लेकिन अंदर हमारी अति अचल स्थिति हो, तो ऐसी बाप दादा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है। उसी के लिए बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को रेडी करता रहता है, जिससे कि हम एवर रेडी हो जाए। और समय प्रति समय पेपर आते हैं, तो जिससे कि हम जब अचानक ही बड़े से बड़ा पेपर जो आएंगे उसमें हम एवर रेडी भी रहें और अचल भी रहें। तो ब्रह्मा बाबा को देखने का हमें बहुत क्लोज मौका मिला, 1962 में तो ज्ञान में आए, लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय भले बाबा से 62 से लेकर 69 तक कई बार मिले होंगे, मधुबन में भी मिले, दिल्ली में भी मिले, कानपुर में भी मिले, काफी काफी समय तक बाबा भी बाहर रहते थे, तो वहां बाबा से मिलने का भी और ज्ञान मुरली सुनने का सौभाग्य मिलता रहता था। लेकिन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा की कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का इन आंखों से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे संबंधित भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी को भी कर्मातीत बनना है। और इस कारण से जो बाप दादा ने, अव्यक्त बाबा ने की स्थिति बनी, साकार ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त की, वो हम सबको भी प्राप्त करनी है। लेकिन उसके लिए भी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते शुरू से कुछ बताना चाहेंगे कि एक तो बाबा का पुरुषार्थ शुरू से ये रहता था, और सब बच्चों से भी बाबा एक पुरुषार्थ कराते थे कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से भले हमारा शरीर वो है, संबंध वो है, वही परिस्थितियां लौकिक बाहर की नौकरी धंधा सब वो है, लेकिन वो सब को हम विस्मृत करके अपने नए जीवन में स्थित हो जाए। तो ये पहली बार से ही बाबा से अनुभव हुआ। कानपुर में बाबा आए हुए थे, लखनऊ में हम पढ़ाई करते थे, इंटरमीडिएट पास करके जस्ट यूनिवर्सिटी में गए थे, तो लखनऊ वालों ने निश्चित किया कि कानपुर में बाबा से मिलने जाना है, सबने फिक्स किया, पहुंचे बाबा के पास। तो पहुंचना तो था सुबह 7-7:30 बजे और पहुंचे थोड़ा लेट, लगभग 8:30-9 बजे। बाबा से सब मिल रहे थे, जब हमारा टर्न आया तो बाबा ने कहा कि आओ बच्चे, बाबा तुम्हारी बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो ये पहला महावाक्य, हम तो नए नए ज्ञान में थे, हमने सोचा कि हाँ बस तो जल्दी आनी थी, 1.5 घंटा लेट हो गई, तो बाबा उस रेफरेंस में बोल रहे हैं शायद, तो हमने कहा हाँ बाबा बस लेट हो गई। बाबा ने कहा अच्छा बस लेट हो गई, बड़ी रहस्यमयी, बाबा तो बहुत बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो बाबा का भाव तो समझ ही गए ना, बहुत समय से माने 5000 वर्ष, कलप पहले के बिछड़े हुए हम सब बच्चे हैं। तो एक तो बाबा यही स्मृति दिलाते हैं कि हमें लौकिक बात भी कोई हो लेकिन उसे अलौकिक बात में कन्वर्ट करते हुए और इस स्थिति में रहना है कि हम 5000 वर्ष के बिछड़े हुए और बाबा हमें 5000 वर्ष के बाद मिला है, तो वो वैल्यू हमारे दिमाग में हो। तो एक तो बाबा ने ये स्मृति दिलाई। दूसरा, बाबा ये स्मृति सब बच्चों को दिलाता था। जब बाबा से कोई मिलने जाते थे ना, मिलते थे, बाबा ऐसे भाव, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, जो बाबा का भार चित्र लगाए देख रहा है ना, तो यही प्रैक्टिकल शेप होती थी एकदम, आओ। और हम सब एकदम चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की भाव में समा जाते थे। और सबसे ब्यूटी तो क्या होती थी, भाव में आ गए, लेकिन बाबा ने आत्मिक अभ्यास इतना पक्का किया हुआ था, जो आप सब लोगों ने जीवन कहानी में भी पढ़ा है ना, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा, पत्नी हो, बच्चा, लड़का, लड़की, कोई, सबको बाबा ने लिख लिख के पक्का किया था। तो बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी पक्की हो गई थी कि जिसको भी बाबा दृष्टि देता था वो तुरंत विदेही हो जाता था। तो एक हमें ये अपने अंदर एक एक बात सुनाने का भाव क्या है, क्योंकि हम सबको कर्मातीत बाबा की तरह बनना है, तो उस बात को हम एक एक बात जो सुनते चले अपने से लगाते चले और अपने से लगाते हुए चेक करते चले कि उसमें और हमारे में अभी कितना अंतर है। तो बाबा जिसको भी देखते थे विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था। तो एक हम भी ये अपने अनुभव में देखते चले, गहराई से अंदर उतरते चले कि हम जिस आत्मा के भी संपर्क में आते हैं, उनको देखते हैं, दृष्टि देते हैं उनके साथ, तो क्या उन्हें भी आत्मिक अनुभूति होती है या उन्हें देह अभिमान में ला करके हम फिर देह की ही बातें करते हैं। और उससे पता कैसे चलता था कि हम विदेही हो गए, क्योंकि जैसे ही बाबा की भाव में गए विदेही हो जाते थे, फिर आधा मिनट के बाद, 45 मिनट, एक मिनट के बाद बाबा ऐसे थपथपा, हाँ बच्चे आओ 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 ऐसे, यानी कि आत्मा कोई जाती नहीं है शरीर से, लेकिन जैसे कॉन्शियसनेस ना विड्रॉ हो जाती है, तो ऐसे ही आत्मिक अनुभूति फिर बाबा बुलाते, आओ बच्चे। तो हम देह में आने का जैसे कि पुरुषार्थ करते थे। अभी तो ऐसा लगता है कि देह में तो हम रहते ही हैं, लेकिन देह से न्यारा होने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी कि विदेही बना देती थी, फिर देह में आने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता था। और फिर बाबा हालचाल पूछता था, क्या नाम है, टोली खिलाता था, और उसके बाद बाबा फिर और बातें पूछता था, क्या कर रहे हो आदि आदि। जो तो दूसरा ये चेक हम करते चले कि हम कितना, ये हमारे अभ्यास में है कि हम जब चाहें विदेही हो जाए और जब चाहें देह में आके अपना कार्य व्यवहार करें। ये एक और चेक करते चलना, क्योंकि बाबा इसी पुरुषार्थ से धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करा। कितने सालों में बाबा ने करा कर्मातीत अवस्था को, सिर्फ 33 वर्ष के अंदर। देखो आज 50 से ज्यादा तो हमें ही हो गए, और भी हैं 60, 70, 78 साल तक के अपनी संस्था को। लेकिन बाबा उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ, ग्रस्त व्यवहार में रहा हुआ, फिर भी वो सब उतर के 33 वर्ष में ही बाबा संपूर्ण कर्मातीत बन गए। क्यों? क्योंकि बाबा ने इस पढ़ाई को बहुत सीरियस ले लिया। और इस कारण से हम अपने को ये देखते चले कि हम भी उस पढ़ाई को इतनी सीरियसली ले रहे हैं। तो ये एक दूसरा बात देखें। तीसरी बात, बाबा पुराने शरीर से की बातें जैसे भुला देना चाहता था, हम जब बाबा से मिले, बाबा ने कहा पूछा क्या नाम है बच्चे, हमने वो अपने कुछ अनुभव में भी लिखा है, तो हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे श्री वो होता है ना, तो श्री, तो हमने बताया बाबा श्री है। तो फिर बाबा ने पूछा क्या बताया बच्चे, तो हम थोड़ा तेजी से बोला हाँ बाबा श्री श्री, ओ आओ आओ दादी आओ आओ दीदी। बाबा जब जाते थे ना तो बाबा के साथ बड़ी दीदी दादी यीशु दादी और पांच सात भाई बहने सब होते थे, गंगे दादी वहां की इंचार्ज थी, तो बाबा ने कहा आओ दादी आओ, आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी ऊंच है, देखो ऐसा कोई हो सकता है। लेकिन भाव क्या है कि बाबा बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, अधेड़ के साथ अधेड़, वृद्ध लोग के साथ वृद्ध, जैसा होता था उनके साथ वैसा व्यवहार करके सबका दिल जीत लेते थे। और हरेक को ये अनुभव होता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो ये विश्व महाराजन के लक्षण है, ऐसे नहीं कि हमारी किन्हीं आत्मा के प्रति की ये आत्मा उनके साथ पार्शियलिटी है, उनके साथ ज्यादा व्यवहार करती है, हमारे साथ नहीं है या दृष्टि नहीं मिलती है आदि आदि कुछ भी। लेकिन मुख्य बात यह है कि हरेक को ये अनुभव हमारे से होना चाहिए कि हाँ हमें ये जितना बहन या भाई जितना स्नेह आदर सत्कार सम्मान देते हैं उतना किसी को नहीं देते, हरेक को हमारे से अपनेपन की फीलिंग आए। और ये बाबा की और यही बड़ी दादी की भी बात थी, दादी से जो भी मिलते थे, इतने समय तक हम बड़ी दीदी बड़ी दादी के साथ रहे, देखा हरेक को ये लगता था हाँ दादी कितना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं। एक ये बात जो हरेक को अपने अंदर एक एक बात को ये चेक करते तब हम कर्मातीत बाबा की तरह सहज बन सकेंगे, नहीं तो बाबा भी तो हम सब की तरह साधारण था, पत्नी थे बच्चे थे व्यापार था पैसा कमाता था सारा लौकिक पूरा का पूरा वही था। लेकिन जब से बाबा को ज्ञान हुआ तब से बाबा ने वो चेंज कर दिया। तो बाबा ने क्या कहा, ये बुलाया सबको, ओ दादी देखो आज बच्चे एक ऐसा बच्चा मिला है ह्यूमरस, क्योंकि हम यंग थे 16-17 साल के थे, तो बाबा उस रीति से बहलाया। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे बाबा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, श्री कौन लगा सकता है, हाँ कौन लगाते हैं श्री, यानी कि देवी देवता जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अब इस समय तो ब्रह्मा बाबा खुद ही कहता है ना मेरी आत्मा पवित्र ना शरीर, तो किसी भी संसार में किसी की भी आत्मा और शरीर पवित्र नहीं, शरीर विकारों की उत्पत्ति और आत्मा भी 84 जन्म लेते लेते अपवित्र निर्बल बन गई है कमजोर विकारी। तो इस कारण से अभी तो ये भी नहीं है, तो बच्चे श्री कैसे हो सकते हो, हाँ अब तुम्हें श्री जैसा बनना है इसलिए बाबा अब तुम्हें नाम देता है मोहन। हाँ तो बाबा ने जैसे नाम भी जैसे लौकिक से अलौकिक कर दिया। तो अब भले साकार बाबा नहीं है और हमारा नाम चेंज हो ना हो, लेकिन हम यही समझें कि लौकिक में जो मेरा व्यवहार था मेरा इस तरह, बाबा कई बार हाँ किसी बहन का नाम माया देवी होता था तो बाबा क्या कहता था, हाँ कि अब माया का क्या काम बच्ची, अब तो माया ने विदाई ले ली भगवान मिल गया, फिर बाबा कुछ भी नाम गीता देवी या गीता कुछ भी अच्छी तरह नाम दे देता था। एक भाई का नाम गरीब दास था, ऐसा सुना है बाबा ने कहा अरे बच्चे अब तो भगवान हाँ इतना खजाना दे रहा है, कितना अमीरों का अमीर बना रहा है, और दास की तो अब बात किया, भगवान ने दिल का मालिक बना दिया, अब तुम्हारा नाम अमीर चंद, तो बाबा ने अमीर चंद कर दिया। इस तरीके से बाबा सबके नाम जो कभी ही नहीं, भाव क्या है कि पुराने जन्म की विस्मृति दिला देता था। तो हम भी अब जब से ब्राह्मण बने जो समय बीता वो तो बीता, लेकिन अब हम यही समझे मेरा यहाँ मधुबन से भट्टी करके जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल जैसे एकदम नया जन्म हुआ है और पुरानी जो भी बातें हैं जो हमें अपनी तरफ नीचे गिराने की तरफ खींचती हैं, उन सब से जैसे मेरा संबंध नाता खत्म। उस रीति से हम तुरंत बाबा की ने जो रेस का स्पीड दिखाई है उस स्पीड को हम फॉलो कर सकेंगे। एक बाबा ने ये बात जो बताई करते करते, और बाबा ने क्या, तो एक एक जो बात बाबा करता था उसको हमें अपने से चेक करते चलना है। फिर बाबा से ना जब हम पहले मिला करते थे, बाबा जैसे आज भी बहन जी बता रहे थे, मुरली में भी था, पहले तो बाबा हाँ कहता था, हमें याद है जब हम लोग आए थे तो बाबा ने कहा था हाँ जीवन कहानी बच्चों को लिख के, तो हम लोगों ने भी दी लिख करके, तो बाबा बस एक सेकंड, देखो भगवान बाबा भले कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन हमारा तो ये अनुभव रहा है बहुत बहुत हद तक जैसे बाबा जानी जाना, क्योंकि परमात्मा के संपर्क में रहा और जैसा संग वैसा रंग होता है, तो शिव बाबा के संग जिसे सर्वशक्तिवान और कहा जाता है जानी जाननहार, ब्रह्मा भले नहीं था लेकिन उसके संग में रहते रहते वो भी जैसे बहुत हद तक जैसा संग वैसा रंग, वो भी त्रिकालदर्शी जैसा हो गया। तो कोई भी चीज होती थी बाबा बस यू पलट के, हाँ बच्चे ठीक, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे, 20-25 का कोई विकर्म नहीं, कोई वो है, और बाबा अपने आप ही ये कहा करता था शुरू में तो लिखने की बात, फिर 65-66 के वक्त बाबा कहता था कि चलो बच्चे अपने कोई भी बात हो बताओ, अगर कोई, क्योंकि एक तो माफी की बात हो जाती थी और दूसरी बात बता देते हैं तो दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है, और जब दिल हल्का हो जाता है तो फिर वो भूल दोबारा रिपीट नहीं होती है, नहीं तो वही भूल बार बार रिपीट करते करते संस्कार भी वो खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से बाबा चाहता ये था कि किसी भी तरह बच्चों के पास्ट विकर्म भस्म हो जाएं, हल्के हो जाएं और बच्चे संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। लेकिन वंडर ये है कि जब 17-18 जनवरी को हम आए यहाँ पर, देखा 17 जनवरी को पहुंच गए थे तो देखा कि बस बाबा से हम 6-7 बार मिले लगभग 2 दिन में, क्योंकि और पार्टियां नहीं थी, तो बाबा आते थे दृष्टि दी थोड़ी सी, कहीं भी बाबा कई बार चलते हुए मिले, 2 बार झोपड़ी में मिले, अपने कमरे में मिले उन 2 दिनों में, तो बस दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि पहले तो हम लिख करके देते थे, बाद में बीच में वो बाबा को बताते थे बाबा, और बाद में लगभग 66-67 में थे थोड़ा बताना शुरू करते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, 2-4 लाइन ही बोलते थे, हम कहते थे बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है, नहीं बच्चे बाबा समझ गया, अब बाबा समाधान कर देते थे। लेकिन अंतिम 2 दिनों में तो एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा मन की बात को तुरंत ही जैसे, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भले बाबा कहने के लिए कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं, वो भी क्यों, उसका भाव भी आज बहन जी ने भी स्पष्ट किया, अगर हम बताएंगे भी नहीं ना तो भगवान कब राजी, भगवान किस पर राजी होता है, सच्चे दिल पर साहब, तो सच्चाई तभी तो प्रकट होगी अगर हम लिख करके देंगे या बताएंगे बाबा को, तो वो बाबा की एक विधि थी जिससे कि हम बताएं हल्के हो जाएं, हमारा आधा माफ हो जाए, और अगर हम यही सोचेंगे बाबा तो जानता ही है मैंने जो भी विकर्म किए हैं उससे क्या है, बाबा जानता है भले, लेकिन और बाबा का ये इम्प्रेशन होगा देखो ये बच्चा भगवान को पहचाना नहीं है, छुपा रहा है, और जितना छुपाएंगे उतना तो अंदर भारी होते जाएंगे। तो उन 2 दिनों में एक बार दो बार नहीं बल्कि 6-7 बार ये अनुभव हुआ, कभी हम सेवा का प्लान पूछने जाते थे, कभी व्यक्तिगत योग की बात, कभी वहां पर हम आसाम में थे, वहां गीता पाठशाला चलाते थे, वहां से ही आए हुए थे, तो भाई कैसे सेंटर की वृद्धि हो आदि आदि, लेकिन हर बार एक्यूरेट बाबा दृष्टि देके, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा करो। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। जिसने अपना मन जीता होगा वो दूसरे के मन की बात को भी तुरंत समझ लेगा। तो इसीलिए और कर्मातीत अवस्था का एक ये बहुत बड़ा लक्षण है, जिस व्यक्ति ने भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया होगा उसकी चूंकि अपने मन के ऊपर वो इच्छा मात्रम अविद्या हो चुका होगा, इस कारण से जिस भी आत्मा के सम्मुख वो जाएगा, जिसको दृष्टि देगा, दृष्टि के द्वारा उसके मन की बात को परख करके उसकी मनोकामना को पूर्ण कर सकेगा। तो देखो एक ये हमें भी ये स्थिति बनानी है, लेकिन कैसे बनेगी, जब हम भी खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो गए। ये इच्छाएं जो है ना, भले हम कहें कि हमारी कोई लौकिक इच्छा नहीं है, अभी गुलजार दादी जी थोड़े दिन पहले क्लास करा रहे थे तो उन्होंने बोला बताया, और ये तो कई बार बाबा ने कहा कि अभी बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं है, लेकिन कौन से संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प है। तो विकारी नहीं है इससे ही खुश ना हो जाएं, और लेकिन आज के संदर्भ में व्यर्थ संकल्प भी क्या है, ये सेवा का खराब संकल्प नहीं है, किसी आत्मा को योगदान कर रहे हैं उसकी उन्नति हो जाए, कोई खराब संकल्प नहीं है। लेकिन कोई भी संकल्प अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध चलता है, हम योग में बैठे ज्वालामुखी योग करना है, विकर्म भस्म होने हैं, लेकिन उस समय अगर हमारे मन में सेवा का प्लान आ गया या कोई भी बात आई, भले व्यर्थ भी नहीं है वो, लेकिन आज के संदर्भ में वो व्यर्थ है, उसको वेस्ट संकल्प कहें। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन के विरुद्ध गया। मन तो कह रहा है कि मुझे योग में बैठना है, योग के अलावा कोई विचार नहीं, लेकिन वो सेवा में गया, ज्ञान के रमण में चला गया, विचार सागर मंथन में, किसी में भी, तो वो व्यर्थ हो गया। तो देखो बाबा इतनी ऊंचाई तक ले जा रहे। हमें याद है पहले जब हम लोग मुरली बाबा की चलती थी 62-63 में, तब बाबा कहते थे बच्चे बहुत जन्मों के विकर्म है तो कर्मणा में तो अंत तक आते रहेंगे, कर्मणा में सावधान रहना है कि कोई विकर्म ना हो, भले मंशा में, और ये तो अंत तक आते रहेंगे। तो बाबा ने मन की छुट्टी दी थी मंशा वाचा के। फिर बीच में बाबा ने कहा कि मुख से भी कोई ऐसा होने दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, मुख से भी कोई ऐसा वचन नहीं। तो बाबा पहले कर्मणा में बोलता था, कर्मणा में किया विकर्म बनेगा, फिर वाचा में आया, और अभी तो बाबा मंशा में भी, किसी में के प्रति अगर मंशा में भी अगर हमारी कोई गलत भावना हुई उसमें भी हमारा विकर्म बनता है। और अब बाबा उससे भी सूक्ष्म ले जा रहा है, कहां, वृत्ति तक, कि अगर सूक्ष्म में वृत्ति में भी अगर किसी के प्रति हुई तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आपको याद होगा 1-2 साल पहले जब महिलाओं पर अत्याचार की कई घटनाएं दिल्ली में घटना और कई जगह हुई थी, तो बाबा से पूछा ब्रजमोहन भाई ने अव्यक्त बाप दादा से कि बाबा हम ऐसा महिला सशक्तिकरण का अभियान निकालना चाहते हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत उनके प्रति वो हो रहा। तो बाबा ने क्या कहा याद है, बाबा ने कहा बच्चे वो भले निकालो लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब हो गई है, चंचल हो गई है, और वृत्ति को वृत्ति से ही बदला जा सकता है। वृत्ति को वाचा से अभियान निकालेंगे, भाषण करेंगे, अच्छा है, संदेश जाएगा, लेकिन वृत्ति को बदलना है तो वो वृत्ति से ही बदल सकता है। कांटा जैसे चुभ जाता है तो कांटे से ही, सुई से ही निकलता है। तो इस रीति से वृत्ति को वृत्ति से ही बदल सकते हैं, और आज संसार की वृत्ति ही खराब हो गई है, वृत्ति के कारण उनके व्यवहार में, कर्मणा में, हर जगह कितने विकार आ गए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, और ब्रह्मा बाबा का यही देखा हमने कि बाबा सब बच्चों से मिलता था, कार्य व्यवहार करता था सब, लेकिन थोड़ा भी समय मिला ना, बाबा देह से न्यारा हो जाता था। बाबा के मिलने के तीन स्थान होते थे, या तो बाबा झोपड़ी में मिलते थे, या अपने कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में। अब तक बाबा का कमरा भी बहुत छोटा था, इतना नहीं था जितना बड़ा आप देख रहे हैं, बस जहां तक पलंग पड़ा हुआ है उतना ही बाबा का कमरा था, और पीछे से दरवाजा होता था, उधर से आते थे, बस इतना। एक तरफ बाबा की जैसे गद्दी पड़ी रहती थी, उस पर बाबा बैठते थे, मिलते थे, एक तरफ पलंग होता था, और बस एक छोटी मेज कुर्सी जिस पर खाना खाते थे, बस और कुछ नहीं कमरे में। तो जब दो तीन लोग होते थे तो बाबा के कमरे में मिल लेते थे, जब और छह सात होते थे तो झोपड़ी में, और जब वहां हिस्ट्री हॉल में मिलते थे तो जब पार्टी बड़ी होती थी, बड़ी माने उस समय तो 12-15 की पार्टी बहुत बड़ी समझी जाती थी, 15-20 उस समय की बात है, तो तब वहां पर मिला करते थे बाबा। तो उसमें एक विशेषता देखी, कैसे कि बाबा टाइम दिया होता था, लच्छू दादी होती थी टाइम की, भाई 10 बजे दिल्ली पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे कलकत्ता पार्टी, 11 बजे बंबई पार्टी, आदि आदि। तो जब मानो 10 बज गए, दिल्ली पार्टी की जो निमित्त टीचर होती थी वो जाती थी, देखती थी बाबा बस बैठा है अपनी मगन स्थिति में, आंख खुली हुई है लेकिन जैसे ध्यान में मतलब नहीं है, लेकिन आंख खुली हुई है और मगन स्थिति में। तो टीचर जाके सामने भी खड़ी हो जाती थी, कई बार बाबा को ख्याल ही नहीं होता था, बाबा अपनी मगन स्थिति में, आंख खुली भी है लेकिन जैसे न्यारा, कहीं बुद्धि कहीं और, शरीर यहां बुद्धि कहीं और। फिर टीचर कहती थी, टाइम हो गया होता था, बाबा मैं फलानी पार्टी लेके आई हूं। तो कभी कभी बाबा को जैसे जर्क सा ऐसा महसूस, बाबा एकदम बुद्धि को जैसे नीचे लाता था, अच्छा बच्ची आ गए, पार्टी आ गई, कि हाँ बाबा पार्टी ले आऊं, हाँ हाँ ले आओ बच्चे, तो बैठ जाते थे पार्टी आके। और फिर बाबा सबसे मिलके जब टाइम हो जाता था, पार्टी जाती थी, और फिर बाबा जैसे देह से न्यारा हो जाता था। तो ये कौन सी स्थिति कि जब चाहे हम देह में आए पार्ट बजाए, और जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए। तो ये स्थिति अभी बाबा ने 4-5 साल पहले एक अव्यक्त मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा था कि अभी बच्चों के सामने दो पेपर विशेष आने हैं। याद है कौन से दो पेपर? ये सब पेपर तो हमेशा सुने हैं कि 5 विकारों का, प्रकृति के तत्वों का, अशुद्ध आत्माओं का आदि, और खाने पीने की वस्तुओं का अभाव, ये सब तो पेपर हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय के मुताबिक दो पेपर विशेष आने हैं। कौन से? एक तो परिवार, ब्राह्मण परिवार से पेपर आएगा। क्या आएगा वो मैं बताता हूं, एक ब्राह्मण परिवार से पेपर आएगा, और दूसरा पेपर कौन सा? अपने शरीर का पेपर। बाबा ने ये खास कहा था, ये ना समझे जो युवान हैं, जो स्वस्थ हैं, शरीर का पेपर नहीं है। नहीं, भले इस जन्म में हमारी युवान आयु है, लेकिन इस शरीर का पेपर सबके सामने आना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का सबसे निकट का साथी है, और आत्मा के जो भी कर्म भोग किए हुए हैं उन सब की बची हुई जितना भी हिसाब किताब है वो शरीर से पूरा होना है। हर एक आत्माओं से पेपर है, और कई चीजों के हमारे हिसाब किताब हैं, वो उन उन व्यक्तियों से पूरे होंगे संबंधों के आधार पर, कहीं संबंधों में कटुता होगी, कहीं कोई धन का पेपर आया, कहीं कोई भी पेपर, लेकिन आत्मा के जो बचे हुए जितने हिसाब किताब हैं वो इस शरीर के द्वारा पूरे होने हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रैक्टिस चाहिए? उसके लिए ये प्रैक्टिस बाबा ने बताया था, ये अभ्यास बच्चों को चाहिए कि जब चाहे हम देह में आए और जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं। क्योंकि अंत में जब ये पेपर आएगा, शरीर का पेपर, तो क्या होगा, बहुत शरीर में व्याधि होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, कोई याद करना भी चाहेंगे याद नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा? उस समय जितना शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा उतना शरीर में व्याधि होती रहेगी, लेकिन महसूस तो आत्मा करती है। इस कारण से आत्मा को अगर डिटैच्ड होने का अभ्यास हुआ तो शरीर में जितना कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन आत्मा डिटैच होगी, उसे महसूस नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकल स्थिति हमने दादी प्रकाशमणि जी की देखी। बहुत दादी को कई बार इतना तकलीफ होती थी, डॉक्टर बोलता था दादी मैं ये दवाई दे रहा हूं, ये इंजेक्शन लगा रहा हूं, बहुत पेन होगा। और दादी कहती थी नहीं मुझे तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। नहीं नहीं दादी, आप हम बच्चों का दिल रखने के लिए कह रही हो कि नहीं नहीं, जब भी मुझे अगर थोड़ा भी होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, शरीर से डिटैच हो जाती हूँ। अब शरीर में पेन होता रहे, जब आत्मा डिटैच, ये दादी के माँ बाप के, और दादी को हम देखते थे जब भी जाओ मुस्कुराता हुआ, कभी भी ये नहीं ओ बहुत दर्द हो रहा है, ये है वो, कुछ नहीं। क्यों? शरीर से डिटैच होने का। तो एक ये पेपर हम लोगों को, चूंकि सबको आना है, तो एक तो हम ये भी पक्का करें जब चाहें हम शरीर से न्यारे हो जाएं, और जब आवश्यकता हो जो पार्ट बजाना है उसके लिए शरीर में आए, वो पार्ट बजाएं, जो भी हमें यहाँ पर सेवा का या जो पार्ट मिला है, उसके बाद जो भी समय मिले शरीर से न्यारे हो जाए। तो बाबा को ये अभ्यास बहुत पक्का, धीरे धीरे बाबा इस अभ्यास को पक्का करते जा रहे थे। और ये तब पक्का होगा जब हमें दो मिनट भी मिले, पांच मिनट भी मिले, हम ये ना सोचें योग में बैठेंगे एक दो घंटा मिलेगा तब हम ये अभ्यास करेंगे। नहीं, जो जो समय मिले उस समय को हम ऐड करते जाएं, जमा करते जाएं, ये अभ्यास जमा होता जाएगा तो बाबा की तरह कर्मातीत बनने में बड़ी सहज अवस्था अनुभूति हो जाएगी। तो पहला पेपर तो ये, और दूसरा पेपर कौन सा जो अब बच्चों के सामने आने वाला है? ब्राह्मण परिवार का। वो बाबा ने कहा वो ब्राह्मण परिवार का पेपर में क्या आएगा है? जब किसी भी ब्राह्मण को हम देखेंगे, ये इतना पुराना ब्राह्मण है, 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का, 50 साल का, लेकिन इसमें भी अभी ये कमी, इसमें भी इतना क्रोध का संस्कार, इसके अंदर भी अभी तक भी ऐसा, तो हमारे अंदर हलचल होगी। क्यों? हम ये भूल जाते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी में तो कोई राजा महाराजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, और इस कारण से वो शायद प्रजा बनने वाली होगी, इसलिए उसकी धारणा कमजोर है, उसको थोड़ी फॉलो करना है। तो एक तो बाबा ने ये बताया कि हम किसी भी आत्मा को देखें उसको केवल वर्तमान के दृष्टि से न देखें, तीनों कालों की दृष्टि से देखें कि आज वर्तमान में उसकी ये स्थिति है, कमजोर अवस्था है, लेकिन ये वही आत्मा है जो सतयुग के आदि में डबल ताजधारी थी, अभी भले ये पार्ट है लेकिन अंत में फिर ये डबल ताजधारी स्थिति को प्राप्त करेगी। कोई भी फिल्म होती है ना, तो नाटक होता है, ड्रामा, अगर सारा मोनोटोनस चलता रहे एक जैसा तो उसमें कोई रस थोड़ी होता है। ड्रामा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई डांस वाले होते हैं, आदि आदि, तो उससे वैरायटी होती है। इसमें भी अवस्था की वैरायटी अगर देखने को मिलती है, इसमें हम कभी भी ये ना कहें कि अरे ये ऐसा क्यों, ये तो ड्रामा की वैरायटी है और ये उसका पार्ट वर्तमान में चल रहा है। और दूसरी बात, ये बात कभी ना भूलें कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढा है, और भगवान ने, बाबा ने ये कहा है कि मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ना, वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बहुत महान है, ऊंच है। तो बाबा इतनी ऊंची नजर से देख करके हमें चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता, वो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। तो इस कारण से अगर हम ये कहते हैं अरे इस भाई में ये ऐसा, इस बहन में अभी तक भी ये संस्कार, तो इसका मतलब हम भगवान को चुनौती दे रहे हैं कि अरे भगवान आपने इसे चुन करके बहुत गलत किया, ये तो इस लायक ही नहीं था। नहीं, भगवान जानी जाना नार यानी त्रिकालदर्शी। तो ये पेपर, क्योंकि अभी हमारे सामने स्थूल पेपर कम आएंगे, सूक्ष्म पेपर ज्यादा आएंगे, और ये सूक्ष्म के लिए हमें तैयारी भी सूक्ष्म करनी पड़ेगी। तो जिस आत्मा का पार्ट देखें, उसे देखते हुए भी हाँ उसकी मदद करना हमारा फर्ज है, सहयोग देना, उसको ज्ञान सुना के, लेकिन उसके प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाए, ये तो ऐसा ही है, ये तो बदल नहीं सकता, या वो नहीं, बाबा ने कहा। और इस कारण से हमें साक्षी दृष्टा होकर के ना, जैसे कि हर एक की स्थिति को देखते चलना है। देखो दृष्टा नाम भी है ना, साक्षी दृष्टा। तो इसमें पांच बातें हैं साक्षी दृष्टा में, कैसे हम साक्षी दृष्टा होके चल सकते हैं, ये जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। पहली बात है, ये जो आंख है ना, ये है दृष्टि। तो ये इस शरीर की खिड़की है, आंख नहीं देखती है, आंख के द्वारा आत्मा देखती है। तो आत्मा है दृष्टा, इसीलिए साक्षी दृष्टा कहा है, साक्षी दृष्टि नहीं, क्योंकि देखने वाली आत्मा है। तो साक्षी दृष्टा यानी दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा देख रहा है, एक तो ये अनुभूति है। दूसरा, जो बाहर सामने देखते हैं वो सब क्या है, दृश्य है। तो हम उन सब दृश्यों को देख रहे हैं, दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा इन सब दृश्यों को देख रहा है। तो जो भी दृश्य हम देखते हैं ना, वो दृश्य तो अपनी जगह है, हमारी कैसी दृष्टि है उस पर निर्भर करता है। हमारा मन अगर अच्छा होगा तो साधारण भी चीज होगी, हमें खुशी, मन खुशी में है, हम उस दृश्य को एंजॉय करते हैं। और मन में अगर कहीं दुख है, कोई ऐसी बात है, बाहर दृश्य बहुत अच्छा भी है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन ही उस बात को दृष्टि के द्वारा, दृष्टि में यही ब्यूटी है कि अंदर की चीज को बाहर लाती है, बाहर की चीज को अंदर ले जाती है। एक ये, तो दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा दृश्य देख रहा है। और हम दृश्य किस भावना से देखते हैं, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है। अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, हमें कोई भी बात नेगेटिव नजर नहीं आएगी, पॉजिटिव ही नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। और जितना दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, एक मिनट चलो, जितना दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, उतना उतना हम हर दृश्य को ना यथार्थ रीति से देख सकेंगे। तो एक दृष्टा, दृष्टि, दृश्य और दृष्टिकोण। और पांचवा क्या चीज है, जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये संसार के दृश्यों को देख रहा हूं, और ये दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, तो इतिहास में हमारा दृष्टांत लिखा जाता है, हमारा इतिहास लिखा जाएगा। जो द्वापर युग से लेकर सारे ऋषि मुनि वगैरह वो सब लिखेंगे, और फिर पूरा कलयुग अंत तक वो पढ़ते रहेंगे। जितना भी इतिहास है, भले नाम रूप उसमें बदल दिया, लेकिन किसको क्या मालूम, किस रीति से हमने क्या क्या पुरुषार्थ किया और किस तरीके से हमारा इतिहास लिखा गया है। तो इसलिए ये पेपर जो आए, उनके लिए हमें अभी से ही एक ये तैयारी करनी है, और बाबा ये ही तैयारी करता चला जा रहा था। एक ये बात देखी, और क्या देखा इसके अंदर, जब बाबा, तो मैं जो अंतिम दिन की बात बता रहा था कि बाबा बस दृष्टि देता था और मन के भाव को परख करके तुरंत उसका समाधान दे देता। अब हमें याद है 18 जनवरी को हम यहीं थे, हैं? तो बाबा को देखो, और सबसे बड़ी बात यह, जब कर्मातीत अवस्था के निकट की स्थिति होती है, मन जीते जगत जीत स्थिति, हमें आने वाली घटनाओं का पूर्ण आभास हो जाता है। पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह को कहते थे ना, उसको कौन सा वरदान था? इच्छा मृत्यु का। मरना तो सबको ही है, हम सबको, जितनों ने भी शरीर लिया सबको जाना है, लेकिन ब्यूटी तब है हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अब ब्रह्मा बाबा का यही देखा उस दिन बाबा ने ना, देखो पूरा, या सुबह से ही यीशु दादी को बोला कि आज जितने भी लेटर लिखवाने हो पेंडिंग, तब ईमेल और इंटरनेट तो होता नहीं था, रोज बाबा पत्र लिखता था और पत्र के द्वारा वो पत्र वहां पर पोस्ट ऑफिस में ले जाए जाते थे, वहां पोस्ट होते थे। तो यूजुअली दो दिन या तीन दिन नियत थे बाबा के, लेकिन उस दिन बाबा ने सुबह से बोला आज जितने भी पत्र लिखवाने हो बच्ची पूरा लिखवा लो, कोई भी पेंडिंग ना रह जाए। नंबर एक बात जिससे आभास मिलता है ये। दूसरा, नक्की लेक का जो हमारा म्यूजियम है ना, वो बिल्डिंग का काफी समय से चल रहा था कि उस बिल्डिंग को लेना है, लेकिन वो तय नहीं हो पा रहा था। रमेश भाई को बाबा ने भेजा था अहमदाबाद में जिसकी वो थी, तो बाबा ने उसी दिन ही क्लियर करा फाइल के ऊपर साइन करके कि अच्छा इसको ले करके यहां पर सेवा के लिए म्यूजियम बनाया जाए। वो फाइल क्लियर कर दी बाबा ने। फिर रोज क्लास होती थी रात को, अभी भी जैसे क्लास 8:30-9 होती है भोजन के बाद, तो यज्ञ में शुरू से नियम है, कम से कम 61-62 से तो मैंने ही देखा है, यहां पर 8:45 ही रोज क्लास, हमेशा 9 बजे बाबा आते थे, रात्रि क्लास कराते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला, जमुना प्रसाद भाई अपने, कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बता दो और भोजन करके सब आ जाएं। तो सब पहुंच गए और 7:30 बजे बाबा भी आ गए। देखो ये जितने भी बात है टोटल उस दिन की बात देखें, उनसे बिल्कुल क्लियर कट आभास हो जाता है कि बाबा को चूंकि कर्मातीत अवस्था थी, कर्मातीत वाली आत्मा को तो ये आभास होता है बस अब मैं संपूर्ण बन गई, अब ये शरीर छोड़ने वाली हूं। तो इसीलिए बाबा ने हर कार्य को, कोई भी पेंडिंग कार्य नहीं, और क्लास भी प्रीपोन्ड करी, पहले कर ली, और बाबा 7 बजे क्लास में, शाम को मतलब क्लास में आए, और बाबा ने पूरा मुरली इतना फोर्स से चलाई, हम तो सामने ही बैठे हुए थे। तो देखो जब कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है ना, तो क्या होता है वो हमने क्लास में भी अनुभव किया। हम मुरली सुन रहे थे, बाबा मुरली चला रहे थे, और एकाएक ही हमारे मन में विचार आया, हम देखो पर्सनल बात बताते हैं, अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो सब लोग को टोली भले मिल जाती है, लेकिन फिर भी दिल तो होती है ना, अगर हमें स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए। और तब तो हम लोग 15-20 ही सामने बैठे हुए थे, तो हमें ये हुआ कि बाबा कुछ बोले, हमारे लिए कुछ बोले। तो मुरली चला रहे थे, अब हमारे मन में संकल्प ही आया, बस कोई कहा नहीं कुछ नहीं, और चूंकि वो आत्मा कर्मातीत थी, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था और मन जीते जगत जीत की स्थिति उसकी हो चुकी थी, इसलिए अपना मन जीता हुआ था तो दूसरे के मन के भाव को तुरंत ही पढ़ लेता था। तो जैसे ही ये संकल्प आया, बस 10-15 सेकंड में ही बाबा ने नाम लेकर के कई महावाक्य उच्चार दिए, जो हमारे लिए आज तक भी गाइडलाइन बने हुए हैं। 18 जनवरी की मुरली में वो अभी भी सीडी मिलती है, या ओम शांति भवन के नीचे जो ऑडियो विजुअल सेक्शन है, साकार मुरली 18 जनवरी की रात्रि क्लास, तो बाबा ने उसमें नाम लेके बोल दिया। तो वो क्या प्रदर्शित करता है? वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहां पर बाबा हमारे इष्ट देव माने कृष्ण की आत्मा तो वही है, तो हम भक्ति मार्ग में कृष्ण की पूजा करेंगे वो सब अलग बात है, लेकिन जब हमारी मूर्तियों से लोग ये इच्छा रखते हैं कि हमारी इन मूर्ति से मेरे मन की इच्छाएं सब पूर्ण हो रही हैं, मैं जो भी इच्छा करता हूं सब हो रही हैं, तो अभी तो हम चैतन्य में हैं, तो हमारे जो भक्त हैं, हमारी जो प्रजा है, उनको यहीं पर ही ये आभास होना चाहिए कि हाँ इनके द्वारा मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जैसा हमें बैठे हुए ब्रह्मा बाबा से बाबा ने तुरंत लेकर के महावाक्य उच्चार दिए, और इसी ने भक्ति मार्ग में गायन है, भक्त की जब इच्छा होती थी साक्षात्कार की, बस भगवान से प्रार्थना करता था सच्चे दिल से, भगवान दर्शन देते थे और कहते थे हाँ बोलो वरदान मांग लो। भक्त वरदान की संकल्प करता था, मांगता था, और भगवान के मुंह से क्या निकलता था, तथास्तु, बस एक ही शब्द, और कोई बार्गेनिंग वाली बात नहीं। भक्त ने मांगी मारुति, भगवान कहे तुम स्कूटर ही ले लो चलो, ऐसी बात नहीं। जो भी भक्त की इच्छा होती थी भगवान उसके भंडारे भरपूर, कालकंटक सब दूर। तो इसीलिए ये द्वापर युग से हमारी भी तब पूजा होगी मंदिरों में, ये जब यहाँ पर हम अपने भक्तों की, अपनी जो प्रजा है उनकी हम मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और मनोकामना पूर्ण कैसे करेंगे, जब हम उनकी मनोकामनाओं को जानेंगे। अंत में कोई ये समय नहीं होगा हमने भी बोला नहीं बाबा को, बाबा ने बैठे बैठे ही मनोकामना जान ली। ऐसे ही अंत में सृष्टि की अनेक आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी, बहुत मनोकामनाएं लेकर के आएंगी। टाइम नहीं होगा कि वो आके बताएं, लेकिन अगर हमने अपनी स्थिति ऐसी बनाई हुई होगी मन जीते जगत जीत की, तो दूसरे के मन के भाव को हम तुरंत पढ़ लेंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तभी द्वापर युग से वो हमारी मूर्तियां बना करके मंदिरों में स्थापित करेंगे, और तब हमारी मंदिरों से ये वाइब्रेशन ग्रहण करेंगे कि हाँ इन ये इष्ट देव से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। तो अभी, और ये बाबा का जीते जी नहीं, ये करा देखा। और क्या देखा बाबा का, 18 जनवरी को रात्रि क्लास बाबा ने चलाई, तो बाबा को वैसे कई बार खांसी भी आती थी, है ना, आपने मुरली में भी सुना होगा बाबा कहते थे, मैं शिव बाबा को कई बार कहता हूँ बाबा ये इस मेरी सखी है, इस सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ, ये मेरे पीछे हमेशा लगी रहती है। तो शिव बाबा क्या कहते थे, क्या कहते थे बाबा, कई बार अपनी रू रुआन मुरली में कहते है ना, बाबा कहते थे देखो बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, अगर बाबा तुमको तुम्हारे कर्म भोग से छुड़ाए तो बाबा के तो सारे बच्चे हैं, हर एक को बाबा को छुड़ाना पड़ेगा, ये तो लाई नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। तुमने जो जो कर्म विकर्म किए हुए हैं उसका तुम्हें ये हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, तो ये तो तुम्हें चुकतू करना है। लेकिन बाबा की एक विशेषता जो मैं खास बता रहा हूं, जो हम सब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। बाबा को खांसी आती थी कई बार, आंख गीली हो जाती थी, हम देखते थे हिस्ट्री हॉल में तीन संदली पड़ी रहती थी ऐसे, एक दो और तीन, तो बाबा उधर संदली पर बैठते थे, इधर मम्मा बैठते थे, बीच की संदली खाली रहती थी। तो जब भी कोई पार्टी आती थी एक एक बच्चा आता था, और वो बच्चा अपना सारा सुनाया करता था जीवन की बातें, क्या पुरुषार्थ के लिए गाइडलाइन लेके जा रहे हैं, क्या पुरुषार्थ चल रहा है आदि आदि, वो बच्चों के लिए बीच वाली सीट खाली रहती थी। तो बाबा के पास इधर ही ट्रांसलाइट का कृष्ण का चित्र रहता था, लक्ष्मी नारायण का चित्र, देखा है ना आपने, अभी भी रखा हुआ है। तो एक तरफ बाबा को खांसी आती थी, कई बार आंख भी गीली हो जाती थी, और फिर बाबा दूसरे ही क्षण कहता था, ये होती थी परिस्थिति। चलो ये अपना ट्रैफिक कंट्रोल है या किसी इसका है, चलो कोई बात नहीं कंटिन्यू करें। अच्छा, तो एक तरफ ये जिसका भी बज रहा है थोड़ा बंद कर लो, तो ये तो एक तरफ बाबा को जैसे ये खांसी आती थी, यानी परिस्थिति इतनी हावी होती थी कि बाबा को जैसे आंख भी गीली हो जाती थी खांसी, लेकिन थोड़ी देर में बाबा स्वस्थिति को मजबूत कर लेता था। देखो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा मिचनो कृष्ण बनेगा, वहां नई दुनिया होगी, नए तत्व होंगे, नया शरीर होगा, कोई खांसी नहीं होगी, कोई सब हिसाब किताब पूरे हो चुके होंगे, कैसी दुनिया होगी, प्रकृति कितनी सुंदर। बस थोड़ा बाबा ने स्वस्थिति मजबूत की, वो परिस्थिति सेकेंडरी हो जाती थी, स्वस्थिति मजबूत होके परिस्थिति पर हावी हो जाती थी और खांसी दूर हो जाती थी, फिर बाबा मुरली चलाते थे। तो अभी होता क्या है, अधिकतर परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली होती है हमारी स्वस्थिति से। हम मानो क्रिमेशन घाट में गए, किसी की मृत्यु हो गई, शमशान घाट में गए या किसी के घर में गए जहां डेड बॉडी, वातावरण बड़ा वैरागी वातावरण और ऐसा सब कुछ होता है, बड़ा दिल में एकदम वैराग आ जाता है, सन्नाटा रहता है। परिस्थिति शक्तिशाली है तो हमारी स्थिति को भी एकदम वैरागी बना देती है। और इसके विपरीत कोई बर्थडे पार्टी में जाओ, मैरिज पार्टी में जाओ, कोई सेलिब्रेशन में जाओ, कैसा वातावरण होता है, वो परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को भी एंटरटेनिंग कर लेती है। तो हाँ, स्वस्थिति से, क्योंकि अभी परिस्थिति तो अति विकराल होनी है और अगर हमारी स्वस्थिति थोड़ी भी कमजोर होगी तो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। और फिर जो हमारा सबका लक्ष्य है एक लाइन में, अंतमते सो गति का, तो अंत में हम सबका पुरुषार्थ ही इसीलिए हो रहा है कि अंत में हमें एक बाप के सिवाय कहीं पर भी कोई और याद न रहे, व्यक्ति वस्तु वैभव धन दौलत पदार्थ कोई भी चीज पद अपना कुछ भी याद न रहे, वो तभी होगा जब हमारी स्वस्थिति मजबूत होगी। तो बाबा ने कैसे ये स्वस्थिति को मजबूत किया, बहुत अच्छा इसका वो उदाहरण है। 1936-37 में ही बाबा ने ये महसूस कर लिया था कि ये मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, ज्ञान में आए लेकिन फिर भी मन भाग जाता है, बाबा को लगाते हैं लेकिन बुद्धि ठहरती नहीं। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने मन को पत्र लिखा, वो पत्र की कॉपी हम लोगों को दी गई थी, बहुत सुनने लायक जैसा है क्या पत्र लिखा बाबा ने, गौर से सुनना, क्योंकि हम सब लोग भी चाहते हैं कि मन हमारे नियंत्रण में हो, लेकिन मन नियंत्रण में नहीं होता, किसी ने मानो अपमान कर दिया या कोई बात हुई, बस मन के अंदर संकल्प चलते रहेंगे। इसी तरीके से कोई भी घटना होती है, हम सहन शक्ति चाहते हैं, सहन शक्ति नहीं आ पाती है। तो बाबा ने भी ये अनुभव किया, फिर बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा, गौर से सुनो कि बाबा ने लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया और तू इतना बलशाली हो गया कि मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तू जहां जहां मुझे ले जाता रहा मैं पीछे पीछे आता रहा, लेकिन अब मैं तुझे कह देता हूं कि हे मन, अब तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं तू मंत्री है और मैं अपनी स्वस्थिति में अब स्थित हो रहा हूं और अब तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, मैं तेरे पीछे पीछे नहीं भटकूंगा। बाबा ने मन को ऑर्डर दिया, ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा कि हे बुद्धि, मन मंत्री है, बुद्धि सेनापति और जितने संस्कार वो सब है सैनिक, लेकिन तू भी हे बुद्धि मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही, मन के साथ साथ जाती रही और तुम दोनों मिलकर इतने शक्तिशाली हो गए कि तुमने मुझ आत्मा राजा को बहुत निर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया, मैं भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, जहां जहां तुम मुझे भटकाते रहे मैं भटकता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं और मैं अपनी शक्ति में स्थित हो गया हूं, स्वमान में स्थित हो रहा हूं और इस रीति से बाबा ने दोनों को पत्र लिख के ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद से बाबा ने एकदम रियलाइज करना शुरू किया कि पहले शक्तियों को ऑर्डर करने से पहले हमें सोमान की सीट पर बैठना जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट पोस्ट होती है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी होता है, जब तक वो अपनी कुर्सी पर है तो सब उसका कहना मानते हैं, और जब वो रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया या इलेक्शन हार गया या कुछ भी पोस्ट पर नहीं है तो कोई उसका कहना नहीं मानता। ऐसे ही हम आत्मा हैं राजा, लेकिन अपने सुमान की सीट पर बैठे हुए नहीं होते और तब ऑर्डर किसी को करते हैं तो वो ऑर्डर क्यों मानेगा, वो तो नहीं मानेगा। तो इसीलिए पहले हमें अपने सुमान की सीट पर, सुमान की सीट पर बैठना होगा, उसके बाद ऑर्डर करेंगे तब वो मानेगा। तो अभी हमें पहले कोई भी हम शक्ति चाहते हैं, मानो कोई ऐसी घटना हो गई, कोई बात हो गई, हमें सहन शक्ति की जरूरत है, फिर भी संकल्प चले जा रहे हैं, सहन नहीं हो रही है कोई बात, तो पहले जो बाबा ने सोमान दिए हैं उन सोमान को पहले स्मृति में लाते ही कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा सर्वशक्तियों से परिपूर्ण हूं, भरी हुई हूं, मैं इस शक्ति को ऑर्डर करती हूं कि हे समाने की शक्ति आप अभी मेरे पास आओ, मुझे आपकी आवश्यकता है। और बस उस समान को बार बार रिपीट करें अपने अंदर, समान की सीट पर जितना बैठेंगे तुरंत ही वो शक्ति आपका कहना मान के आप में जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दे। इसीलिए बाबा रोज कहता है कि रोज रात्रि को क्या करो, सोने से पहले पोता मेल लिखो और इनकी दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार की रोज दरबार लगाओ। कई बार बाबा ने कहा है ना, हम बैठ के अगर दरबार नहीं लगाएंगे रोज, अगर कोई राजा दरबार ही नहीं लगाएगा तो कैसे उसके ये मन बुद्धि और सैनिक ये जितने हैं ये उसके ऑर्डर पर चलेंगे, कहने पर ही नहीं चलेंगे, जब हम मिलेंगे ही नहीं उनसे तो कैसे वो हमारा कहना मानेंगे। तो रोज इनकी दरबार लगाना बहुत जरूरी है, और बाबा ने यही करा, ये लिखा और रोज दरबार लगाता था, फिर बाबा को कभी ये कंप्लेंट नहीं रही कि क्या करें मन भाग जाता है, बस फिर मन वशीभूत, यही मन जीते जगत जीत है। तो इसीलिए रोज हमें दरबार लगाना एक तो बहुत जरूरी है, और क्या करें। उस दिन भी बाबा को 18 जनवरी को देखा, बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला के बाबा उठे, और उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, सुबह भी खांसी थी, पहले दिन भी काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उस दिन रात को एक बार भी खांसी नहीं आई, जो किस बात का सूचक है कि जब हम भी कर्मातीत बनेंगे ना तो हमारे सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे, और योग बल जो है हमारे कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। अभी तो कर्म भोग बलशाली हो जाते हैं योग से, इसलिए कर्म भोग की भासना हमें भी आती है, दूसरों को भी आती है, ये बहुत भोगना भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कर्मातीत बनेंगे कुछ समय के लिए, हम बिल्कुल सब रोगों से मुक्त होके, बिल्कुल जितने हिसाब किताब है कार्मिक अकाउंट्स हैं सब चुकतु हो जाएंगे, और आत्मा बिल्कुल हल्केपन का अनुभव करेगी। एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जो इस बात का सूचक है, हमें भी वो अवस्था का अनुभव होगा, थोड़े समय के लिए होगा, उसके बाद आत्मा शरीर छोड़ देगी। ये जो कर्मातीत अवस्था का अनुभव सबको होगा, लेकिन बस ज्यादा समय ये स्थिति नहीं रहेगी, थोड़े समय के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ देगी। इसके बाद बाबा ने मुरली चलाई, बाबा उठ के बाहर की तरफ आए, 18 जनवरी की रात्रि की क्लास। एक कदम बाबा ने बढ़ाया, फिर बाबा खड़े हो गए, फिर बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी, एक एक बच्चे को, और दृष्टि दे के बस शक्ति से भरते रहे। दादी जी सामने बैठे हुए थे, दादी जी को शक्ति दी, खास। फिर बाबा को हुआ कि चलूं, फिर एक कदम बढ़े लेकिन फिर रुक गए, फिर घूमे, फिर घूम के बाबा ने एक एक को दृष्टि दी। तो उस दिन दरवाजे तक जाते जाते बाबा को फिर भी टाइम लगा, और बाबा को ये हो आज मैं शक्ति से भरपूर, क्यों? क्योंकि बाबा को आभास हो गया था ये मेरा अंतिम साकार मिलन है, इस शरीर के द्वारा ये मेरा अंतिम मिलन है। तो जब ये आभास हो गया तो नेचुरली स्वाभाविक रीति से जाते जाते कितनी बार बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी और दरवाजे पर जाके क्या बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर पहले पूरे 33 वर्ष में बाबा ने कभी नहीं बोले, उस दिन ही बोले बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। अभी तक टेप में वो अक्षर भरे हुए हैं। तो जब आत्मा को आभास हो जाता है मेरा ये अंतिम साकार मिलन, और ये जितनी भी घटनाएं उस दिन की बाद में हम लोगों ने सोची तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जब कर्मातीत अवस्था को आत्मा होती है तो धीरे धीरे उसे पूरा आभास हो जाता है। इसके बाद बाबा कमरे में गए और कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ बाबा ने शरीर त्याग किया। लेकिन ब्यूटी तो उसके बाद देखने को मिली, जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा और सारी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद 1-2 बजे बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन उसमें कोई बाबा के शरीर को इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई लेप वगैरह लोशन नहीं लगाया गया, केमिकल लोशन, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा। और सबसे बड़ी बात, आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर कुछ घंटे के बाद ही मतलब स्टिफ अकड़ जाता है जैसे, लेकिन इतने 65 घंटे के बाद भी हम लोगों ने जब बाबा को स्नान कराया वरिष्ठ भाई बहनों भाइयों ने, और जब शांति यहाँ स्तंभ तक लेकर के गए, बाबा का शरीर काफी हद तक वही फ्लेक्सिबल जैसा था, चमकता हुआ, कोई दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं पड़ा, बिल्कुल वैसे ही लगता था जैसे बाबा सो रहा है, हमेशा की तरह बाबा बोलेगा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बिल्कुल वही चमक पूरी की पूरी बनी हुई। और ये इस बात का प्रतीक है, प्रकृति जीत का प्रतीक। माया जीत तो हम सबको बनना है, लेकिन माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी, 5 तत्वों से बना, प्रकृति के तत्वों से बना ये शरीर है, और इन 5 तत्वों ने भी अंत में इतना सहयोग दिया कि बिल्कुल काफी हद तक शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, कोई कालापन नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, और बस बाबा का अंतिम जब संस्कार किया गया बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बाबा एकदम नॉर्मल निंद्रा में सो रहे हैं। तो ये हमें प्रकृति जीत भी बनना है। तो माया जीत का तो हम सब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति जीत कैसे बने उसके लिए कुछ मिनट में आपको 1-2 विशेष बातें बताते हैं। प्रकृति जीत है, प्रकृति शब्द के बाबा ने 2 अर्थ बताए हैं। क्या अर्थ? एक ह्यूमन नेचर, एक ये बाहर की नेचर। ह्यूमन नेचर माने मनुष्य का स्वभाव, और बाहर की नेचर माने 5 तत्व। तो जब आत्मा ने, बाबा ने ये कहा है कि जब आत्मा पवित्र एकदम हो जाती है, इस शरीर में ठहर नहीं सकती, इस शरीर से चली जाती है। तो जब आत्मा पवित्र होती है ना, तो ये शरीर 5 तत्वों का बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो इन तत्वों को भी हमें पावन बनाना है, क्योंकि सतयुग के आदि से लेकर यही हमारे सबसे निकट के साथी है। अलग अलग नाम रूप होगा 84 जन्मों में, लेकिन तत्व तो यही होंगे ना, 5 तत्व, जो अभी तमो प्रधान हो गए, सतयुग में सतो प्रधान होंगे। तो इन तत्वों को हम, आत्मा जितना इन तत्वों को अपना मित्र बना लेंगी, उतना ये तत्व हमारे अंत समय तक सहयोगी रहेंगे। और जो गायन है ना, अभी प्राकृतिक आपदाएं बहुत आनी है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी हिलेगी, अभी नेपाल में हिली, जैसे कच्छ भुज में जब हुआ था, गुजरात में, सौराष्ट्र में वो तो ये हुआ था, कितना सुनामी तो एक एक तत्व को मित्र बना ले। तो हम केवल एक गुण का वर्णन करेंगे, मानो ये है जल है, सुनामी आती है, फ्लड बाढ़ आता है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, केदारनाथ में जैसे हुआ एकदम, बहुत महीने भर का पानी चार घंटे में ही बरस गया, एकदम बाढ़ आ जाती है इस छत से भी ऊंची, इतना नदियों में पानी भर जाता है, क्या करेंगे ऐसे में जब एकाएक होगा। तो बाबा ने ये बताया है कि जितना हमारा वॉइसलेस कनेक्शन होगा, ये सब वायरलेस कनेक्शन फेल हो जाएंगे, मोबाइल फेल हो जाएगा, टेलीफोन, इंटरनेट सब फेल हो जाएंगे। तो वॉइसलेस कनेक्शन, निर्विकारी कनेक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, क्योंकि हमने जल को अपना मित्र बना लिया। तो जल को मित्र कैसे बनाएंगे, मित्रता किनके बीच में होती है, जिनके एक जैसे संस्कार होते हैं, स्वभाव में संस्कारों में निकटता होती है, उनमें अपनी फ्रेंडशिप होती है। तो जल का कौन सा संस्कार है, शीतलता, इससे भी बड़ा संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट का। जल को गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में, कटोरी में लो, हर जगह वो सेट हो जाता है। एडजस्टमेंट पावर जल में सबसे बड़ी है। ऐसी अगर मेरा स्वभाव ऐसा एडजस्टेबल हो जाए, मैं हर आत्मा के साथ मिलजुल के चल सकूं, ऐसा नहीं कि मैं इनके साथ तो मिलजुल के नहीं चल सकती, इनके साथ बहुत अच्छी तरह चल सकती हूं, नहीं, हर आत्मा के साथ मैं एडजस्ट होके चल सकूं, ऐसा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी स्वभाव की हो तो क्या होगा, मैंने जैसे जल से मित्रता कर ली, और जल कभी भी मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इसी तरह जल का और स्वभाव क्या है, जल अपना रास्ता बना लेता है। अगर सामने बह रहा है नाला नदी, बहुत बड़ा पत्थर भी आ गया तो भी वो इधर उधर से निकल के रास्ता बना लेगा। तो हम भी कोई परीक्षा आए, पेपर आए, उसमें रुके नहीं, किसी भी तरह अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते चले, तो जैसे ये जल का गुण धारण किया। अगर रुक जाते हैं तो क्या होता है, पानी रुक जाता है तो क्या होता है, उसमें गंध आती है, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मेरा आगे बढ़ना रुक गया है, वो इस बात से प्रदर्शित होगा कि ये घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये सब मक्खी मच्छर जैसे पैदा अगर हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा आगे बढ़ना अफेक्टेड है, प्रभावित हो गया है। तो उससे क्या होगा कि जल का जैसे मैंने संस्कार पूरा धारण नहीं किया। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो, मुझे रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो ये जल का संस्कार धारण कर लिया, तो जितनी भी सुनामी आएगी, फ्लड होगा, बादल फटेगा, कुछ भी होगा, जल को चूंकि मित्र बना लिया, तो जल ऑटोमेटिकली हमें सेफ्टी टच करेगा, और हमारे पांव बिना सोचे समझे उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और तुरंत मक्खन से बाल की तरह निकल के हम सेफ्टी में चले जाएंगे। ये जल को मित्र बनाने का, और जैसे कूलनेस, शीतलता धारण, ऐसी पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, सहन शक्ति। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दाता का, पृथ्वी देती है, एक बीज बो दो पेड़ आ जाएगा और हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पानी मिलता है, तेल मिलता है, सब्जी मिलती है, फल मिलते हैं, गेहूं, चावल, अनाज, सारी चीज पृथ्वी से मिलती है, पृथ्वी दाता है। ऐसे ही हमें अपना दाता का पार्ट प्ले करना है। कोई भी हमारे सम्मुख आए, वो खाली हाथ ना जाए, इसमें कोई स्थूल चीज की बात नहीं, प्रेम, आदर, सद्भावना, सत्कार, स्नेह, ये सब चीजों में तो कोई खर्चा होता नहीं। तो इस कारण से कोई भी आए, उसे अपनेपन की महसूसता तब होगी जब हमारे मुंह से, चेहरे से, वाइब्रेशन से ये सब चीज हम दाता बन के देते चले, जो बाबा ने करा, जो दादियों ने करा, हर एक को महसूस होता था यहां से हम जैसे भरपूर होके जा रहे हैं। तो इसमें स्थूल चीजों में तो लिमिटेशन होती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। तो हम दाता बन के देते चले, बस जितने दैवी गुण है उनमें कोई खर्चा नहीं। तो उससे क्या होगा, यानी पृथ्वी का गुण धारण कर लिया हमने, पृथ्वी को मित्र बना लिया, तो जितने भी पृथ्वी में हलचल होगी, अर्थक्वेक आएगा, जितने भी वो होंगे प्रॉब्लम, वो हमारी मृत्यु का दुख अशांति का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने मित्र बना लिया और पृथ्वी हमारी रक्षा के लिए बंधी हुई है। क्योंकि अगर हमने इनके कारण प्राण त्याग दिए और तो अंतमते सो गति तो होगी नहीं। हमारे प्राण हमारी इच्छा से निकलने चाहिए। कोई प्राकृतिक आपदा के कारण प्राण निकले तो उस समय तो कहीं गर्डर गिर रहा है, कहीं हलचल है, चारों तरफ आए तोबा मची हुई है, ऐसे में प्राण निकले तो अंतमते सो गति तो होगी नहीं, दुर्गति हो जाएगी। तो मेरे प्राण मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं निकले, मेरी इच्छा से निकले, वो तब निकलेंगे जब ये प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। क्योंकि इन प्रकृति के तत्वों के अंदर ही तो हमारे प्राण हैं। तो इनको जब हम पूरा कोऑपरेटिव बना लेंगे तो ये प्रकृति के तत्व तो हमारी रक्षा करेंगे और एप्रोप्रिएट समय पर आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। वो अंतमते सो गति है, जैसा ब्रह्मा बाबा को देखा, जैसा दादियों का अनुभव किया। इसी तरीके से हर तत्व का एक है तो ये पृथ्वी का गुण है। इसीलिए सहनशीलता, हरेक के गुण आप देखना कि कम से कम आठ आठ दस दस गुण है, लेकिन मैं तो एक एक गुण बता रहा हूं। ऐसे वायु का कौन सा गुण है सबसे बड़ा? हा? वायु जो है ना, ये प्राण वायु है। पानी, ये जल, इसके बिना, वायु के बिना हम दो मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते। भोजन के बिना आदमी चार पांच सप्ताह तक जीता रह सकता है, पानी के बिना आदमी चार पांच दिन भी जी सकता है, लेकिन वायु के बिना आदमी कितना जी सकता है? दो मिनट भी नहीं जी सकता। तो वायु के बिना आदमी नहीं। तो इसीलिए ये प्राण वायु हर चीज को ये हल्की बनाती है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, हल्का बनाती है। तो इसी तरह हम वायु की तरह सदा हल्के रहे। कभी कोई परिस्थिति आती है, पेपर आता है, ऐसा डेथ हो गई, कोई ऐसा एडवर्स पेपर आ गया, हमारा मन भारी हो जाता है। नहीं, बाबा ने कहा वायु की तरह जितना हल्के रहेंगे तो क्या फायदा होगा? कि वायु चाहे साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, वायु बहुत 150-200-300 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलेगी, लेकिन ये हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, दुख अशांति का नहीं। क्यों? क्योंकि वायु को हमने मित्र बना लिया और ये मित्र मित्र की रक्षा करता है हमेशा। देखो, एडवर्स नेचर वाले भी प्रकृति में रहते हैं। अग्नि, प्रकृति के अंदर अग्नि का रूप सूर्य है, तो सूर्य उसका क्या विशेषता, अग्नि का क्या गुण होता है? अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। भस्म तो विनाशकारी हो गया, हम तो स्थापना के निमित्त हैं, रूप परिवर्तन कर ले। बाबा ने कहा अंत में ऐसा समय आएगा, आत्माएं रोती हुई आपके पास आएंगी, लेकिन आपका ज्वालामुखी स्वरूप देख के उनका रूप परिवर्तन हो जाए, हंसती हुई आत्मा चली जाए। अशांत आत्माएं आएंगी, आपके रूप को देख करके शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो ये रूप परिवर्तन हम तब कर सकते हैं जब हमने अपना अग्नि का सा रूप धारण किया होगा, तब हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अंत समय में ना ये ही होगा कि हमें अपना, लोग आएंगे, हम एक होंगे, पांच लोग आए मानो हमारे सामने, एक दुर्गा का भक्त, एक काली का, एक हनुमान का, एक राम का, आदि आदि, हम एक ही होंगे, लेकिन साक्षात्कार की चाबी तो शिव बाबा के पास है। हमारे सम्मुख वो आएंगे, लेकिन जिस भावना से जो आता है उसको वैसा साक्षात्कार होता है, वो अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करके पूरे प्रसन्न चित्त से चले जाएंगे। पाना था सो पा लिया, ये उनके मुंह से। देखो ब्रह्मा बाबा का भी तो यही हुआ। ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण की आत्मा थी, नारायण की, जो भी देखता था उसको कृष्ण का, नारायण का, असुर का साक्षात्कार होता था। लेकिन हम सब ने इतिहास में पढ़ा है, एक सरदार जी थे, उनका परिवार ज्ञान में आता था, सरदार जी खुद नहीं आते थे, तो उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मा बाबा की हत्या कर दूंगा, तो छुरे लेकर के गए, बहन से कहा मुझे मिलना है, बहन बाबा के पास बैठा के चली गई, और जब उसने देखा वो और बाबा अकेला है, तो उसने छुरा निकाला और बस वार करने ही जा रहा था तो क्या हुआ, उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार। अब ब्रह्मा बाबा गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन उसकी भावना गुरु नानक देव में थी, इसलिए जैसे ही उसने गुरु नानक देव का साक्षात्कार किया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बस, अरे गुरु जी मैं क्या करने वाला था, मैं तो बड़ा पाप करने वाला पापी हूं, मुझे माफ कर दो। बस छुरा बाबा के पैर के पास रखा और रोता हुआ माफी मांगता हुआ वहां से चला गया। बस यही हम बच्चों के द्वारा अंत में पार्ट चलने साक्षात्कार के, जो जैसी भावना लेकर के आएगा हमारे द्वारा वैसा साक्षात्कार करके पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। हर एक के मुंह से जब ये वर्णन होगा यही तो भगवान की प्रत्यक्षता है, यही तो साक्षात्कार है। तो ये और लास्ट तत्व तो कौन सा है, आकाश। क्या है आकाश की विशेषता है, विशालता। और ऐसा आकाश जो है ना, जो है वो आकाश के अंदर विशाल है, तो इसने साइंटिस्ट ने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं उसके अंदर, उसी की वजह से हमारे आज सब कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर, सब कुछ उसी के कारण चलते हैं। यहाँ से वेव्स जाती हैं और लौट के आती हैं और दूसरे के पास वो सुनाई देता है, दिखाई देता है। ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन विश्व की सब आत्माओं के साथ हो, किसी ऐसा नहीं कि इनके साथ अच्छा है तो हम बहुत देर तक बात करते रहे, उनके साथ अच्छा नहीं है तो वो सामने से भी आए ना तो भी हम नजर बचा के निकाल करके चले जाएं, ऐसा नहीं। हर एक के साथ, मैं विश्व महाराजन आत्मा हूं तो विश्व की एक एक आत्मा के साथ मेरा संबंध हो, और वो तब होगा कब, जबकि हमारा कम्युनिकेशन हर एक के प्रति हमारी भावना होगी। तो इसलिए ये हमारा संबंध तो क्या होगा, फिर आकाश मार्ग से आने वाले एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, रॉकेट, बादल फटना, जो भी आकाश मार्ग की समस्याएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश की विशेषता को हमने धारण कर लिया है। तो इस तरह एक एक तत्व की एक एक विशेषताओं को ना, देखो सूर्य का, सूर्य की तरफ जब हमारा मुंह होता है तो परछाई किधर होती है, पीछे होती है, परछाई छाया यानी माया। तो बाबा की तरफ ज्ञान, सूर्य की तरफ हमारा मुख होगा तो ये छाया माया कमजोरियां सब पीछे रह जाएंगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी पीठ हुई सूर्य की तरफ तो क्या होगा, छाया हमारे आगे आगे चलती है, वो हमारा मार्ग प्रदर्शन करती है। तो हमारी कमजोरियां जो हैं वो हमारा मार्ग प्रदर्शन करेंगी, हमें कमजोर बना देंगी। इसीलिए ये देखना है ज्ञान सूर्य की तरफ, कभी भी मेरा मुख विपरीत ना हो, मुख सदा बाबा की तरफ रहे, पीठ दूसरी तरफ रहे, पीठ कभी भी बाबा की तरफ ना हो। तो ये पांच तत्वों के तो बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि हम सबको प्रकृति जीत भी बनना है, जो ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया। इसीलिए लास्ट समय तक भी पांचों तत्वों ने, प्रकृति ने बाबा का पूरा साथ दिया और ये हमें ये सब देखने का अपनी आंखों से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि आज आपके साथ शेयर किया। हम ये चाहते हैं कि हम सब केवल इसे सुनने तक ही सीमित न रखें, एक एक तत्वों की विशेषताओं को भी धारण करते रहें, और जो सुना उन मार्ग पर चलेंगे तो हम सब भी बाबा की तरह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ले। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बारिश ने अपनी भरपूर कोशिश की और बाबा के बच्चों को, बाबा के अनमोल रत्नों ने जो रहा हुआ पाठ था, अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति, और बाबा को साकार नजदीक से जिन्होंने स्वयं अपनी खुली आंखों से देखा, बुद्धि की आंख से देखा, वो बहुत सुंदर मार्मिक दृश्य, अनुभूतियां और ज्ञान के गुह्य रहस्य भ्राता जी ने हम सबके समक्ष रखे, जिससे हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि अब हम भी मन जीत, प्रकृति जीत और अपनी कर्मातीत स्थिति को सहज बना सकते हैं, इन कुछ मुख्य शिक्षाओं को, आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए। तो हम भ्राता जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं।